क्वेश्चन थे। ये मुरली है 1 फरवरी 94। त्रिकालदर्शी स्थिति में के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो। दिव्य बुद्धि व विशाल बुद्धि का वरदान देने वाले त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों प्रति बोले, आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को क्या साधन है त्रिकालदर्शी बनने और दूरांदेशी बुद्धि और सुदर्शन चक्र फिराएंगे तो भी त्रिकालदर्शी बनेंगे। दिव्य नेत्र त्रिनेत्र वही बुद्धि और भी कुछ सृष्टि चक्र का ज्ञान संपूर्ण चक्र का ज्ञान। तो त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो, इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि का है। यह वरदान बाप दादा ने किस किस को दिया है? सबको। बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो। दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार बुद्धि दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं। ज्ञान योग धारणा सेवा वर्णन भी करते हैं। ज्ञान का वर्णन, योग का वर्णन, धारणाओं का वर्णन और सेवा। लेकिन जानना वर्णन करना यह सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं। इसमें सभी होशियार हैं। ज्ञान को जानने में और ज्ञान का वर्णन करने में। फिर बुद्धू किसमें है? धारण करने में। ये सभी को आता है, चाहे नए हो चाहे पुराने हो, सभी होशियार है इसमें। लेकिन धारण करना इसमें नंबर बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषता है, दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती है। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती है, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। तो एक है साधारण बुद्धि और एक है दिव्य बुद्धि। दिव्य बुद्धि के द्वारा बाप को जाना, स्वयं को जाना, तीनों कालों को जाना, शक्तियों को धारण किया, चारों ही सब्जेक्ट का आधार भी दिव्य बुद्धि है। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे कि प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होते हैं। वैसे सभी कहते भी है कि जो सोचा जो करो, जो सोचो जो करो जो बोलो आगे पीछे को सोच समझ करके करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो, परिणाम हुआ भविष्य। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। तो नंबर वन है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी, लेकिन बच्चों में तीन प्रकार की बुद्धि वाले हैं। कौन सी तीन प्रकार की बुद्धि? सत्व प्रधान बच्चों में, तमो प्रधान भी है, रजो प्रधान भी है बच्चों में। पहला नंबर सुनाया सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि, दूसरा नंबर कभी त्रिकालदर्शी कभी एक कालदर्शी, और तीसरी तीसरे नंबर की बुद्धि दो कालदर्शी। संशय बुद्धि? ना ना, निश्चय बुद्धि तो तीनों ही है। तीसरा नंबर अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखती, सदा यही सोचते हैं कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है इसमें ठीक रहे, भविष्य क्या होगा इसको क्यों क्यों सोचे। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। तो त्रिकालदर्शी बुद्धि माना क्या? कर्म करते हुए तीनों काल स्पष्ट हो। कैसे क्या करें उसके लिए? कर्म करने की जल्दी इतनी होती है कि सोचने का टाइम ही नहीं है उसमें, कहाँ सोचेंगे। केवल नाम मात्र त्रिकालदर्शी बुद्धि। क्या किया जाए त्रिकालदर्शी बनने के लिए? आशीष भाई क्या करें? साक्षी से कैसे? तीन काल, भूत वर्तमान भविष्य, कर्म करते समय। तो वहां साक्षी तुरंत हो जाना थोड़ा कठिन है, जब इमीडिएट कर्म करना है, एक्शन एक्शन करनी है। वो तो है, अध्यात्म की सर्वोच्च अवस्था है साक्षी भाव। तक सब चीजों का जो रिजल्ट है वो साक्षी स्थिति है।
न्यारापन चाहिए,
न्यारापन भी चाहिए, और पास्ट का ध्यान रख के प्रेजेंट करना है। तीनों काल स्पष्ट हो, अभी जो कर्म कर रहे हैं उसके साथ पास्ट का क्या संबंध है?
पास्ट,
हाँ, पास्ट में जो कर्म किया है उसका अनुभव साथ में रख के करना है। पास्ट में जो भी कर्म किए हैं अब तक के, हमने किए हैं पर उनके बारे में सोचा नहीं और आगे बढ़ गए। पास्ट में कर्म किया अगर विकर्म है तो वो जो पश्चाताप भी बहुत गहरा हो, ताकि उस कर्म का अनुभव साथ में है अभी, उस पश्चाताप और प्रायश्चित के आधार से आगे वो पाप नहीं होगा। हाँ, तो उसमें भी तीनों फिर मनसा वाचा कर्मणा, वो बोल बोले थे उसका परिणाम बहुत ही गलत था, परंतु बोले गए, अभी उसको वापस तो नहीं लिया जा सकता है, अभी उसका केवल अनुभव है। इस अनुभव के आधार से फ्यूचर जो भविष्य की जो क्रिया है एक्शन है वो वापस रिपीट ना हो। तो पास्ट भी इतना स्पष्ट हो जितना कि वर्तमान है, तो वर्तमान कर्म करते समय पास्ट के अनुभव जो गलत कर्मों से प्राप्त हुए है वो अनुभव साथ में हो। ये बोला था पिछली बार तो गड़बड़ हो गई थी, अभी वो नहीं बोलना है। एक पिछली बार ये सोचा था इस परिस्थिति में, वो सोच के वजह से बोल और कर्म भी ऐसे हो गए थे, अभी वो नहीं सोचना है। तो सोच बोल कर्म, पिछली बार ये परिस्थिति आई तो इस समय उस समय इस तरह की भावनाएं उत्पन्न हुई थी, नेगेटिव नकारात्मक भावना, यदि अति भावुक हो गए थे उस समय, इतने भावुक के आंसू आ गए थे। तो ये अनुभव है साथ में, अगर वैसी ही परिस्थिति पुनः उत्पन्न होती है तो वही भावुकता आ सकती है और वही आंसू बहेंगे और वही स्थिति को फिर नीचे ले जाएंगे। ये अनुभव भूत का अनुभव के आधार से वर्तमान स्पष्ट और आगे है भविष्य, तीन काल, तीन काल को याद रखना है। अभी भविष्य को क्या करें? कर्म अभी कर रहे हैं उसका भविष्य के साथ क्या संबंध है?
ऐसा करो जो
पश्चाताप ना करना पड़े।
नहीं, उसका फल फ्यूचर का खाता।
हाँ, वो तो पॉजिटिव हो गया। निगेटिव भी थोड़ा सोचना है यहाँ पर, मतलब गलत कर्म अगर करते हैं तो फिर पश्चाताप करना पड़ेगा फ्यूचर में। इसके लिए हमारे अपने अनुभव और दूसरों के अनुभव, हर एक को आग में हाथ डालने की जरूरत नहीं है ये जानने के लिए कि वो हाथ जलता है। बहुतों ने डाला और उनका जला है। बहुतों के कर्म हमारे सामने हैं, आंखें तो खुली है ना, देख रहे हैं। हमने कुछ नहीं किया पर किसी ने गलत बोला और उसका प्रभाव क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ? हाँ, एक है दूसरों से सीखना, एक है स्वयं के अनुभव से सीखना, और दोनों के अनुभव से सीखना। वाइस मैन, इंग्लिश में कहावत है, लर्न्स फ्रॉम हिज ओन एक्सपीरियंस। जो वाइस है, वाइसर, उससे थोड़ा जो होशियार है वो दूसरों के अनुभव से सीखता है, और वाइसेस जो है सबसे होशियार, लर्न फ्रॉम बोथ, अपने अनुभव और दूसरे के अनुभव दोनों से। हर चीज का, कुछ चीज का अनुभव हमें ही करना होता है, चाहे कोई कितना भी बताए ऐसे करो वैसे करो, परंतु जब तक हमें चोट नहीं लगती तब तक रियलाइज हमको होता नहीं, और अब तक हम वो करते भी नहीं, चाहे हजार लोग हमको कहे कि ये ऐसा करो। पर कुछ कुछ बातें ऐसी है इस मार्ग में कि हमें गिरना पड़ेगा और अनुभव करना पड़ेगा। चोट लगेगी फिर जागेंगे, चेतना जागेगी, तब तक मूर्छा में रहते हैं। हजार लोग बता रहे ये नहीं करो, ये नहीं करो, ये नहीं करो, नहीं सुनेंगे। कुछ कुछ बातों में स्वयं अनुभव करना होता है। तो स्वयं के अनुभव, दूसरों के अनुभव और दोनों के अनुभव से सीखना, यह है सबसे बुद्धिमान व्यक्ति। तो भविष्य का भी ज्ञान हो और भविष्य के क्या परिणाम होना है इसके लिए परमात्मा श्रीमत क्या क्या है, बाबा ने कह दिया ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। काम आदि मध्य अंत दुख देता है, परमात्मा महावाक्य है। पर कभी सोचा है ऐसा क्यों कह रहा है वो? आदि में मतलब पहले, बीच में भी वो दुख दे रहा है और उसका जो परिणाम है वो भी दुखदाई है। बाबा ने कहा है आदि मध्य और अंत दुख देता है। जो काम से भर जाता है वो इस वाक्य की गहराई को भूल जाता है, क्योंकि वो वर्तमान में तो उसे सुख ही लगता है, जैसे कल का था, कल्पित सुख है वो, एक भ्रमित सुख है जो कि सुख भास रहा है परंतु अंत में वो दुख में परिवर्तित होने वाला है। उस समय ये भाव भूल जाता है और उसके पास पुराना जो दुख है उसी क्रिया से प्राप्त हुआ उसे वो विस्मृत है उस समय। जैसे बाइबल में एक उदाहरण है कि व्यक्ति दुखों में जाता है पर भूलता नहीं, जैसे एक स्त्री है गर्भवती, प्रसव पीड़ा, बच्चे का जन्म है, जब जब जन्म देती है तो तब संकल्प करती है कि इस बार बस, ये अभी अंतिम बच्चा है, इतनी पीड़ा इतनी वेदना मैं नहीं सह सकती। पर जैसे ही बच्चा होता है और बच्चे का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखता है उसे, वो पीड़ा भूल जाती है। फिर दूसरा बच्चा, वही सब क्रिया चलती है। मतलब दुख हुआ पर दुख से सीखा नहीं उसने, विकार में गई आत्मा, विकार से दुख भी उत्पन्न हुआ परंतु वो दुख छिप जाता है, कुछ और दिखने लगता है। यही विकारों का स्वभाव है, सारे ही विकार दुख देते हैं परंतु अल्पकाल की अहम तृप्ति होती है उससे। क्रोध से अल्पकाल की अहम की तृप्ति होती है, कुछ समय के लिए ऐसा लगता है अच्छा मजा सका दिया उसको, बहुत बोलता था इसमें भी तो सुख है ना थोड़ा सा हमेशा हमको ही बोलते रहता था, तो इस बार हमने भी पाठ पढ़ाया, अच्छा अब नहीं बोलेगा कभी तो ये किसकी तृप्ति है? अहम की तृप्ति है। परंतु वास्तव में सभी विकार दुख ही देते हैं, अंततोगत्वा, वर्तमान भविष्य भूत तीनों ही काल में। परंतु व्यक्ति जब उसमें संलग्न होता है उस समय वो ये त्रिकालदर्शी स्थिति को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो अनुभव हुआ था भूत में उसका वो इतना गहराई से चिंतन नहीं करता। व्यक्ति दोषी है परंतु वो अपने दोष को मानने के लिए कभी भी तैयार नहीं है। मनुष्य का स्वभाव है वो को दूसरों को कसूरवार ठहराता है, मैं मेरी गलती है ही नहीं। अध्यात्म की पहली सीढ़ी है स्वीकृति। कोई अगर ब्राह्मण कहे कि मैं व्यभिचारी हूं कितना बुरा लगता है सुनने में, उसको भी बुरा लगेगा, परंतु यदि संकल्प में व्यभिचार हो रहा है तो उसे ये स्वीकार करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही उन्नति होगी, तब तक कोई उन्नति ही नहीं है। कोई कहे मैं झूठ बोलता ही नहीं, वो बोलता है परंतु अपने आप से या बाबा के सामने भी कभी नहीं कहता, तो वो उस झूठ से मुक्त हो ही नहीं सकता, उस काम से मुक्त ही नहीं हो सकता, उस लोभ से मुक्त ही नहीं हो सकता। लोभ ही बहुत है अंदर में, लोभ भरा हुआ है परंतु कभी व्यक्त नहीं करता कि मैं लोभी हूं, क्योंकि उसे शायद ये पता ही नहीं कि जो वो कर रहा है वही लोभ है। लोभ की परिभाषा वो समझता है पैसे संग्रह करना, ये करना, वो करना, पर ये आध्यात्मिक मार्ग का ये लोभ है ये उसे पता नहीं। आध्यात्मिक मार्ग में यही अहंकार है, सेवाएं बहुत कर रहे परंतु जहां जा रहे कह रहे मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, भाषण भी अहंकार के ऊपर दे रहे कि अहंकार बहुत खराब चीज है, छोड़नी चाहिए। वशीभूत, पर वो वशीभूत आत्मा कभी ये स्वीकार करती है कि मैं वशीभूत हूं? अगर वो स्वीकार कर ले तो वो मुक्त हो जाएगी उससे, कि ऐसी माया है। आत्म प्रवंचना कहा जाता है इसे इंग्लिश हिंदी में, आत्म प्रवंचना, प्रवंचना अर्थात धोखा, छलावा, स्वयं स्वयं को छलना, स्वयं स्वयं को धोखा देना, आत्म प्रवंचना। हर आत्मा आत्म प्रवंचना से पीड़ित है, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा है कि ये जो मैं कर रहा हूं यही श्रीमत का उल्लंघन है। वो श्रीमत के उल्लंघन को कुछ और समझ रहा है, पर हम जो कर रहे हैं वो सही है। कोई व्यक्ति कभी ये मानता ही नहीं कि मैं दोषी हूं, क्योंकि ऐसे बहुत सारे सिद्धांत है, जैसे कार्ल मार्क्स, इस इतिहास में कार्ल मार्क्स करके एक व्यक्ति आया और फ्राइड, ये दो व्यक्ति है, उन्होंने सिखाया है कि व्यक्ति कभी दोषी नहीं है। कोई व्यक्ति व्यभिचारी बना तो व्यभिचारी वो समाज कौन सा था, माँ बाप कौन से, समाज दोषी है व्यक्ति नहीं, ये कार्ल मार्क्स के सिद्धांत है, स्वयं व्यक्ति दोषी नहीं है। फ्राइड भी ऐसा ही कहता है। माया कौन है? माया कोई व्यक्ति है? रावण कोई व्यक्ति है? माया कोई व्यक्ति है ही नहीं, जो कमजोरी को ही रूपक है, वो कमजोरी का ही एक स्वरूप है, वो कोई नाम रूप वाला व्यक्ति तो है ही नहीं, तो हम ही हो गए ना फिर। माया कौन है? हम, हमारी कमजोरी मतलब हम, दूसरा कोई है नहीं। जब भी माया शब्द आए, माया मुरली में, उसको हटाओ और वहां विकार शब्द को रखना, या आप में जो कमजोरी है वो शब्दों को वहां रखो, वो माया शब्दों को ऐसे हाथ रख देना उसके ऊपर, देखना ही नहीं। माया, माया खा जाएगी मतलब अलबेलापन खा जाएगा, अगर किसी में अलबेलापन है तो, अगर किसी में क्रोध है तो क्रोध खा जाएगा। माया शब्द को वहां से हटा के जो आपकी कमजोरी है उसी को रखना वहां पे, शब्द चेंज, नहीं तो माया कोई ऐसा दूसरा हो जाता है, हम नहीं वो, कोई दूसरा है, हम नहीं है वो, दूसरा है, तो इससे व्यक्ति अपने आप को हल्का करता है। पर जब ये ज्ञात होगा कि ये मैं ही हूं, मेरे ही अंदर है, क्योंकि हर कोई भी अगर स्वयं स्वयं को अगर दोषी ठहराए तो तुरंत उन्नति होगी। स्वयं पहले स्वीकृति, फर्स्ट स्टेप ही स्वीकृति है कि मुझ में ये कहने को बहुत ही बुरा लगता है, पर चलो किसी और को कहना ही नहीं है, मियां बीवी राजी, काजी के पास जाने के का क्या काम है, घर की बात बाहर नहीं ले जाओ, तो घर की बात घर में ही रखो, चलो वो भी है, परंतु स्वीकृति ये है। अगर व्यभिचार है तो व्यभिचार से आत्मा तुरंत मुक्त होगी, नहीं तो सारा ही ब्राह्मण जीवन चलेगा और उससे मुक्त नहीं होगी। आलस्य है परंतु कभी कोई स्वीकार नहीं करता मैं आलसी हूं, करता है कोई ब्राह्मण? बहुत कम। महसूस तो होती पर महसूस था कि किस गहराई की, परिवर्तन होता नहीं, गहराई में जाना पड़ेगा संपूर्ण। अगर कोई कहे ब्राह्मण की हाँ बाबा ने मुरली में कहा है किसी मुझे छोड़कर और किसी को भी याद करो तो वो भी कर्म है, सबने सुना मुरली में वाक्य, हम याद भी कर रहे हैं बहुत प्यार से किसी को, परंतु फिर भी कभी कोई स्वीकार करता है कि मैं विकर्मी हूं मैं पापी हूं? ये वक्त वाक्य हम किसके लिए कहते हैं, किसके लिए रखे हुए? अज्ञान काल में हम ऐसा कहते थे, अज्ञान काल में नहीं अभी, अगर अभी कह दो बाबा के सामने, चलो बाबा ने बड़े बड़े सम्मान दिए वो अलग बात है, पर अगर कोई ये कहे कि हाँ मैं हूं, तो फिर मन में जागृति आएगी, अरे मुझे इससे मुक्त होना है, और वो मुक्ति की जो मार्ग है वो बहुत प्रशस्त हो जाएगा, तुरंत होगी वो मुक्ति। पहले तो कोई स्वीकार ही नहीं करता इस बात को, अपने दोष को ही स्वीकार नहीं करता। जैसे वो दिखाया है ना, एक व्यक्ति चोरी करने जाता है खिड़की पर अभी अंदर घुसा नहीं है, और जोर से खिड़की लगती है उसे, इतना जोर से लगती है, तो वो क्या सोचता है? ये नहीं सोचता कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, पहला विचार उसके मन में आता है कि मैंने चोरी तो की ही नहीं अभी, इसके लिए मैं दोषी तो हुई नहीं, और खुद को दोषी करार करने से पहले वो जज के सामने कहता है ये जो है इस घर का सेठ इसका ही दोष है, क्योंकि खिड़की देखो कैसी बनाई है जिससे अभी मैं मरने वाला था वो सारा ही दोष उसके ऊपर डालता है कि ये जो साहूकार है इसने ये जो खिड़की बनाई है बहुत ही गलत बनाई है कि इससे अभी मेरी मृत्यु होने वाली थी। तो साहूकार कहता मेरा दोष थोड़ी है, वो जो बड़ा ही था वो जो खिड़की बनाने वाला कारपेंटर उसका दोष है। तो जज बोलते अब उसको बुलाओ, तो वो आता है, वो कहता है मेरा दोष तो है ही नहीं, मेरे जो मजदूर थे बनाने वाले उसने वो बनाई थी, उसको बुलाओ। तो मजदूर को लाया जाता है, मजदूर कहता है मैं भी क्या करूं, जब मैं बना रहा था एक स्त्री सामने जा रही थी, मैं उसको देखते रहा तो मेरी बुद्धि हलचल में आ गई, तो वो उसका दोष है। फिर वो स्त्री को लाता है, स्त्री कहती है कि स्त्री को बोलते तुम ही दोषी हो, ये इसकी जो मृत्यु होने वाली थी वो चोरी तो रह गई बाजू में ये चक्र चालू है। वो कहती क्या करूं मेरा कोई दोष नहीं, मैंने जो दुपट्टा पहना था पहली बार ही मेरे पति ने लाया था, वो ऐसे तो मैं कभी कोई मेरे तरफ देखता भी नहीं। तो बोलती अच्छा तो वो दुपट्टा, फिर वो दुपट्टा किसने लाया था, तो उसका पति कौन है? पति वही है जो चोरी कर रहा था चक्र वहां आके रुक गया। उसने कहा मैं दोषी नहीं हूं, ये तो कहानी को खत्म करना था शायद, इसके लिए वहां रुकी, नहीं तो ये बेअंत चलती है तो व्यक्ति अगर ढूंढा जाए तो पूरा चक्र घूमकर हमको पता चलेगा दोषी मैं खुद ही हूं, मेरे ही कर्म है। कोई कहता मेरे साथ बहुत अत्याचार अन्याय हो रहा है, यहाँ पर भी यज्ञ में भी अन्याय हो रहा है, तो सारा अगर चक्र घुमाए 84 जन्म का 63 जन्म का उसके जीवन का, तो पता चलेगा सारे का दोषी वो स्वयं ही है। स्वीकार कोई करता ही नहीं, लड़ाई तो इसकी है, अहम की लड़ाई है सारी, कोई नहीं स्वीकार करता। चलो वही कहा ना, किसी और के सामने नहीं, बाप के सामने तो स्वीकार कर लो और उसकी गहराई में जाओ कि चाहे वो कितना भी है परंतु ये कोई कहे कि मैं पापी हूं तो तुरंत उस पाप से मुक्ति होने के मार्ग सामने आ जाएंगे। कोई स्वीकार कर ले कि मुझ में बहुत क्रोध है पर अभी मुझे मुक्त होना है, तुरंत मार्ग सामने आ जाएंगे। मुझ में काम वासना अभी भी भरी हुई है, तुरंत उससे मुक्त होने के मार्ग आएंगे। मुझ में इतना अहंकार है अभी इससे मुक्त होना है, तो तुरंत मार्ग सामने आ जाएंगे। मुरलियों में केवल वही पॉइंट दिखने लगेगी जो इससे हमको मुक्ति होने में मदद करे, बाकी हमको दिखेगा ही नहीं, केवल वही दिखेगा कि जिससे हमारी मुक्ति हो, जो एक छिपा हुआ पॉइंट है बस उसी से हमारी मुक्ति हो जाएगी। जो किसी को अगर कहो तो बोलेंगे कहां ये पॉइंट तो हमने सुनी नहीं आज की मुरली में, जो कि हमारा जीवन जिसने परिवर्तन कर दिया, दूसरों के लिए उसका अस्तित्व भी नहीं क्योंकि हमारी बुद्धि अब जागृत अवस्था में है। तो ये है त्रिकालदर्शी बुद्धि जो तीनों ही कालों को जानती है, भूत के अनुभव, वर्तमान में जो हो रहा है, और ये अनुभव अगर है तो ऑटोमेटिक जो कर्म, क्योंकि कर्म करते समय थोड़ी याद करना है हर बार, कहां इतने फास्ट होते हैं कर्म, कोई बैठ के सोचे अभी मुझे ये व्यक्ति आ रहा है इसके साथ मुझे ये बोलना है ये नहीं बोलना है ये बोलना है वो बोलना है, ऐसा कौन सोचता है? जैसी भावनाएं रहती है ऑटोमेटिक शब्द निकलते हैं, भावनाएं बहुत ही तिरस्कार भरी है, घृणा भरी है, क्योंकि उसने कभी भविष्य भूतकाल में बहुत दुख दिया था। ऑटोमेटिक हमें सोचना नहीं पड़ता, हम भी ऐसे ही शब्द बोलते, टॉन्ट कमेंट्स सहज। 10 साल तक हम प्रैक्टिस कर रहे थे, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, किसी के प्रति मेरे मन में घृणा नहीं, नफरत नहीं, सबके प्रति प्रेम भरा हुआ है। परंतु 10 साल पहले किसी आत्मा ने बहुत ही दुख दिया था हमको, और हमें बहुत गुस्सा आया था, तिरस्कार से भर गई थी आत्मा। अभी वो गुप्त हो गया, लुप्त हो गया कहीं, और अचानक एक दिन सामने आ गया। ये 10 साल तक कभी किसी के प्रति घृणा नहीं, क्रोध नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं, और अचानक वो सामने आ गया और ऐसे जबरदस्त शब्द निकले कि वो सुनकर हमें भी लगा, क्या ये मेरे शब्द है? क्योंकि भावनाओं का परिवर्तन किया ही नहीं था, वो दबा के रह गई थी, दबके रह गई थी, दमित भावनाएं निकली और उसने अपना कार्य किया, और फिर हम पश्चाताप। और पश्चाताप भी समझ में नहीं आता है, क्योंकि इतना समय तो 10 साल तक तो अच्छी भावना चालू थी सबके प्रति, अचानक एक ही आत्मा के प्रति क्या निकल गया? सभी भावनाओं का परिष्कार, हिंदी में शब्द है परिष्कार, शुद्धिकरण। भावना का परिष्कार जब तक नहीं किया, परिष्कृत भावनाएं जैसी भावनाएं, क्योंकि बोल का आधार भावनाएं है, तो इस त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहना है। ये है दिव्य बुद्धि, ठीक है ना? सतो रजो तमो नहीं। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसी, ऐसा श्रेष्ठ आसन है, कैसा, जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है, दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है, सदा त्रिकालदर्शी, कभी त्रिकालदर्शी, कभी एक कालदर्शी, या फिर अलबेली बुद्धि, तीनों में से कौन सी है हमारी? बाप दादा ने बच्चों की रिजल्ट में देखा कि ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जमा सभी के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों? ऐसा कोई भी नहीं दिखाई देता जिसके पास खजाने जमा नहीं हो, सबके पास खजाने जमा है, ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसके पास नहीं है, सभी के पास जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों? अगर किसी से भी पूछेंगे स्वयं का ज्ञान, बाप का ज्ञान, चक्कर का ज्ञान, कर्मों के गति का ज्ञान है, सभी के पास सर्वशक्तियां है कि कोई है कोई नहीं है? ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? अच्छा, सभी गुण है, सर्वगुण बुद्धि में है, बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी है, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है? खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है, समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसा करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। सारा ही जीवन और सारा ही दिन, सारी दिनचर्या अगर देखी जाए हर ब्राह्मण आत्मा की, तो बाबा जो कहते पोता मेल, उसमें पता चलेगा कि गलतियां बहुत हुई है। अगर श्रीमत के साथ में देखा जाए दिनचर्या को, तो पता चलेगा ये भी गलती थी, ये भी गलती थी, ये भी गलती थी, ये भी गलती थी, पश्चाताप ही पश्चाताप। शरीर को देखना ही सबसे बड़ी गलती, जब बोल दिया तो अब क्या? आत्मा देख करके बात करना ही पुण्य है, शरीर को देख करके बात करना ही पाप है, ये परिभाषा है पाप और पुण्य की। परंतु चित्त पश्चाताप से भरे तो ही उससे मुक्ति होगी। ये रियलाइजेशन तो है कि कुछ तो गलत हो रहा है, तो ही उसको सुधारने का प्रयत्न होगा, नहीं तो कहां से प्रयत्न? कोई अगर सोचे मैं राइट ही हूं, राइट को क्या सुधारेगा कोई? रॉन्ग है तो कुछ संकल्प आएंगे सुधारने। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। जैसे ज्ञान की पॉइंट बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कॉपिया में भी भरी हुई रहती है, सबके पास कितनी डायरिया इकट्ठी हुई है, सुनते हैं, सुनाते हैं, कॉपियां भरी हुई है, सबके पास कितनी डायरिया इकट्ठी हुई है, काफी स्टॉक हो गया है। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है, मैं जो हूं जैसा हूं, वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई है, जानते तो सभी है लेकिन अंडरलाइन है, जो हूँ जैसा हूँ उसमें अंतर पड़ जाता है। इस रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट व गुण व शक्ति आवश्यक है वैसे कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। तो कारण समझा, एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है और दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। इसलिए जो भी महत्वपूर्ण संकल्प है दिनचर्या के, उनको तुरंत ना किया जाए, थोड़ा समय देना है उनके लिए। जैसे आज की दिनचर्या, एक महत्वपूर्ण संकल्प है आज कितना योग करे, महत्वपूर्ण संकल्प है। एक है कि जैसा होगा वैसा करेंगे जैसा टाइम मिलेगा, एक है उसमें दृढ़ता, नहीं करना है इतना करना है इतना करना है इतना करना है, तो वो थोड़ा सा शक्तिशाली होगा, नहीं तो नहीं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प क्या है, बीज, बीज है संकल्प। वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है, फिर जो दिन भर में हो रहा है वो विस्तार है, अमृत वाला फाउंडेशन है। अभी जो समय चल रहा है ये सुबह का समय 8 बजे तक, ये सब बीज है दिनचर्या का। अगर किसी का ये समय ठीक हो गया तो वो दिनचर्या भी स्वतः ही ठीक हो जाएगी। गाड़ी को पटरी पर डालने का समय अब है, दिन भर कहाँ कहाँ डालोगे, कहाँ कहाँ घुमाओगे, वो स्वतः ही चलती रहे, इसके लिए अमृत वेले का समय है। केवल अमृत वेला नहीं, केवल बैठा हुआ योग नहीं, उसके बाद का भी समय और चिंतन का विषय और मुरली का समय, ये सारा ही शक्तिशाली समय है, क्योंकि चित्त यहाँ शांत है। उसी समय ही संकल्प करने है, प्लानिंग करनी है क्या क्या करना है, नहीं तो दिन ऐसा ही बीत जाएगा, हाथ में कुछ नहीं आएगा शाम में रात में। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ संकल्प को बीज को, तो क्या हो जाएगा, वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता। सबका आधार संकल्प है, जो मन में विचार उठ रहे हैं उन विचारों को कैसे महान बनाया जाए, बस इसी का चिंतन करना है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता है तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती, संकल्प ही शक्तिशाली नहीं है। दिन अमृत वेला उठे और कुछ खास संकल्प नहीं है, चलो बैठे तो बैठ गए योग में, हाँ रोज का काम है, कोई उसमें दिव्यता नहीं है, क्योंकि नए संकल्प लाने के लिए कुछ पढ़ के सोना होगा। फिर रात में जिस संकल्प से हम सोते उसी संकल्प से उठते। रात में कोई टीवी देखते देखते सोता है तो सुबह उठता है तो गुड मॉर्निंग करने के बाद पहले वही आता है कि वो जो सीरियल चालू थी अभी उसमें आगे क्या होगा, जो भी देखा, जो रात का आखिरी संकल्प वो दिन का शुरुआत का पहला संकल्प। रात में किसी से बात करते 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 सोए, उठते ही वहां से उसके साथ वापस बात शुरू, बात पूरी नहीं होती है, शुरू हो जाती है। अगर बाबा से बात करते करते सोए तो उठते भी वही बातें फिर वापस चालू हो जाती है, पर वो अच्छी बात है। ज्ञान के संकल्प करते करते, ज्ञान की चर्चा करते करते सोए तो उठते ही फिर ज्ञान के संकल्प चालू हो जाते हैं। सारे सिद्धांत सेम है, चाहे वो फिल्म देखो, चाहे मूवी देखो, चाहे सीरियल देखो, चाहे टीवी देखो, चाहे बातचीत करो, चाहे व्यर्थ देखो, या फिर मार्केट में घूमते घूमते आके फिर सो गए, जो भी करो वो उसी से दिनचर्या शुरुआत होगी। ऑटोमेटिक सिस्टम बना हुआ है वही, वो दिनचर्या तो रात की नींद तो केवल एक विश्राम था बस, आप वहीं से चालू करते हो, जहां से छोड़ा था वहीं से सुबह का चालू। इसके लिए वो जो विधि है रात वाली वो शक्तिशाली हो। बाबा ने इस पर भी एक मुरली चलाई है कैसे सोना है, अगर कुछ बात भी करना है तो बाबा ने कहा कमरे से बाहर जाकर बात करो फिर सो, 95 की मुरली सोने की विधि। जैसा सो रहे जिस अवस्था में सो रहे उसी अवस्था में उठते, इसके लिए अच्छा चलो कभी ठीक से सोए भी नहीं परंतु फिर अगर दृढ़ संकल्प अगर करे आत्मा सुबह तो उसको बदल सकती है। सब कुछ आधार संकल्प ऊपर है, सुबह उठते ही श्रेष्ठ संकल्प करना, जबरदस्ती श्रेष्ठ संकल्प करना अगर नहीं आ रहे तो, क्योंकि वो आधार है, हाँ तो फिर आदत पड़ेगी, नई आदत बनानी है, 3 दिन मिनिमम चाहिए। लास्ट में लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का ही है ना, श्रेष्ठ लक्ष्य, निर्लक्ष्य नहीं हो जाना है, लक्ष्य हो जीवन में कोई, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई उसको चेक करो। निरुद्देश जीवन, जीवन का उद्देश्य ही नहीं। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते हो, कभी मेहनत अनुभव करते हो। क्या हो जाता है? अलबेला आ जाता है, बुद्धि अलबेली बन जाती है, आलस्य आता है उसमें, इसलिए कभी सिद्धि और कभी मेहनत अनुभव होती है। तो आज का होमवर्क, मैं मास्टर त्रिकालदर्शी आत्मा हूँ, जो भी कर्म, जो भी संकल्प और जो भी बोल होंगे वो सभी त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर करते हैं। अलबेलेपन को आने नहीं देना है। स्वयं की स्थिति को शक्तिशाली, और संकल्प बीज है तो संकल्पों को शक्तिशाली बनाने। अच्छा, ओम शांति।